Hare Krishna. तो आप सबका स्वागत है सूरत में अविनाश जी के घर पे सायंकाल के सत्संग में। धन्यवाद इस परिवार का करते हैं कि आप सबको कृष्ण कथा सुनने का और हमको भगवान के वचनों का वर्णन करने का और कथा सुनाने का अवसर दिया है। जब कहते हैं कि ये कार्य ध्यान से करना चाहिए, कोई भी कार्य ध्यान से करना चाहिए अथवा सावधानी से करना चाहिए। सावधानी कहेंगे तो उसमें भी ध्यान आएगा, तो ध्यान से जब हम कहते हैं तो ध्यान शब्द जब आएगा, नमस्कार जी, तो ध्यान करने के लिए क्या साधन है जिससे हम ध्यान कर सकते हैं? ध्यान का साधन या इंस्ट्रूमेंट मन है। मन से ध्यान होता है। ध्यान कहीं भी करने की बात आएगी तो उसका साधन है मन, और मन की होती हैं वृत्तियां। मन में उसकी वृत्तियां होती हैं। मन की वृत्ति का क्या अर्थ है? मन के अंदर जैसे समुद्र में वेव्स होती है ना, छोलियां, ऐसे मन के अंदर हर समय कुछ वृत्तियां उठती रहती हैं, नीचे जाती रहती हैं, ऊपर आती रहती हैं। और वो वृत्तियां कैसी होती है? संकल्प विकल्प, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। मन का कार्य है संकल्प विकल्प, थिंकिंग, विलिंग, फीलिंग, ये मन का कार्य है। किस आधार के ऊपर मन ये संकल्प विकल्प करता है? कई जन्मों के जो संस्कार मन में है वो संस्कार पीछे से मन को प्रेरित करते हैं कि ये विचार करो। इस एक जन्म के नहीं है, कई जन्मों के मन के ऊपर संस्कार अंकित हैं। मन ही हमको एक शरीर में दूसरे शरीर में ले जाता है। एक दूसरे शरीर से दूसरे शरीर में ले जाने वाला आत्मा को मन है, और शरीर में लाने के बाद भी उस शरीर में सुख से नहीं रहने देने वाला भी मन है। एक शरीर से दूसरे में लेके भी मन आता है, और जिसमें लाता है वहां भी सुख से रहने नहीं देता। उस मन के भगवान श्री कृष्ण ने विशेषण बताए हैं, चंचल। मन कैसा है? चंचल है। अर्जुन, अरे ये विशेषण अर्जुन देता है, चंचलम ही मन कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण, मन चंचल है। चंचल किस चीज को कहते हैं? जो एक जगह नहीं रहे। बच्चे, कौन से बच्चे को चंचल कहते हैं? जो उछल कूद करता है। चंचलम ही मन कृष्णा। दूसरा मन का विशेषण है परमाथी। परमाथी का मतलब इतना तेजी से घूमता है कि पता नहीं लगता है कहाँ है। जैसे मंथनी होती है ना, जैसे पंखा चलता है ना, तो इसके पर नहीं दिखते हैं, कौन सा पर कहाँ है नहीं दिखता है। तो इस घूमने को मंथन बोलते हैं। जैसे मिक्सी है, कोई चीज घूमती है उसको मंथन बोलते हैं। तो मन कैसा है? परमाथी। वो ऐसा तेजी से चक्कर लगाता है कि हमें पता नहीं, अभी हम बैठे हैं यहां तो थोड़ी देर में बंबई से, दिल्ली से, पता नहीं कलकत्ते से, कहीं से घूम घूम के आ जाए। परमाथी है। दूसरा मन का विशेषण है परमाथी। तीसरा मन का विशेष है बलवद, बहुत बलवान है। इतना बलवान है कि एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जा सकता है आत्मा को, और इतना बलवान है कि बुद्धि जो मन को नियंत्रण में रखने के लिए है, उस बुद्धि का मन नहीं सुनता है, इतना बलवान है। हमको बुद्धि को स्थिर करना होगा तो मन को स्थिर करना पड़ेगा। मन स्थिर होता ही नहीं, बुद्धि के निर्णय को नहीं मानता है, बलवान है बहुत। और चौथा विशेषण दिया है दृढ़म, बलवत दृढ़म, चंचलम ही मन कृष्ण परमाथी बलवत दृढ़म। दृढ़ का मतलब है हठी है, कोई बात ठान लेता है तो कुछ भी करो वहां से हटने वाला नहीं। मन ऐसा है, कोई चीज आपकी मानो कहीं रखी है नहीं मिल रही है, तो वो दिमाग में ऐसा आपको परेशान करेगा वो कोई काम नहीं करने देगा। हठी, उसका हठी रसुबा है। और फिर अस्थिर है, ये मन के सारे विशेषण दिए गए हैं। हमारा इस जीवन में विशेष उद्देश्य है इस मन को, जो हमको जन्म जन्मों में भटकाता है और हर जगह विचलित करता है, परेशान करता है, उसको हम वश में कैसे करें। मन को वश में करना मानव का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है इस संसार में। मन ही हमारा मित्र है, मन ही हमारा शत्रु है। मन ही इंसान का मित्र है और मन ही शत्रु है, एक मन। जो मन वश में नहीं है वो शत्रु है। किसके वश में नहीं है? बुद्धि के। बुद्धि के नियंत्रण में जो मन नहीं है, और बुद्धि को सारथी कहा गया है। शरीर रूपी रथ का, ये शरीर हमारा रथ है, इसका सारथी बुद्धि है। सारथी का मतलब ड्राइवर। तो ये शरीर में ड्राइवर, शरीर गाड़ी है, ड्राइवर उसका बुद्धि है, तो बैठा कौन है गाड़ी में? जीवात्मा, हम इसके यात्री हैं। अब आप बताइए कि ड्राइवर का हाथ स्टीयरिंग के ऊपर होना चाहिए और सावधानी से चलाएगा तो गाड़ी ठीक चलेगी सही मार्ग के ऊपर, या ड्राइवर जो है नशा पिया हो और स्टीयरिंग छोड़ के बैठा फोन के ऊपर बात कर रहा हो? हाँ, क्या बात है, आपका क्या विचार है? स्थिति इसको थोड़ा सा सोच करके विचार करके देखो। तो यात्री है जो बैठा, वो परेशान होगा। ड्राइवर अगर स्टीयरिंग को सावधानी से नहीं संभालेगा तो यात्री को चिंता होती है कि नहीं होती? तो आप सामान्य गाड़ी में देखा है ना। तो ऐसे आत्मा यात्री है, बुद्धि ड्राइवर है और मन स्टीयरिंग है। अब मन अगर बुद्धि के कंट्रोल में नहीं है तो यात्री तो हमेशा परेशान रहेगा ही ना। तो ये स्थिति है। अगर मन हमारा मित्र तब है जब वो बुद्धि के नियंत्रण में है। तो ये मन हो गया हमारा मित्र, और शत्रु तब है जब बुद्धि की आज्ञा में नहीं है। तो शत्रु हो गया, शत्रु इसलिए हो गया कि वो वो यात्री को एक्सीडेंट करा देगा, और एक्सीडेंट कौन सा करेगा, किसी कुत्ते बिल्ले के शरीर में ले जाएगा। मानव शरीर से अगर एक्सीडेंट कर दिया मन ने असावधानी के कारण, तो किसी ऐसी नीच जून में लेके चला जाएगा। तो ये एक्सीडेंट तो ये सबसे बड़ा हुआ ना। यहां दुनिया में एक्सीडेंट होता है तो अस्पताल में होता है, टांग ऊपर टांगी होती है, तो ये तो यहां का एक्सीडेंट हो गया। और लंबा एक्सीडेंट हो गया तो किसी कुत्ते बिल्ले सुअर के शरीर में जब मन ले जाके हमारे को गली में धक्का खिलाता रहेगा, बार बार कहीं डंडा खाना पड़ेगा, तो वो भी तो बड़ा एक्सीडेंट हो गया ना। तो एक शरीर ही बदल गया, इस शरीर में टांग कटनी पड़ती है, कभी मजबूरी में एक्सीडेंट बड़ा हो जाए खतरनाक, तो उसमें तो शरीर ही कुत्ते का मिल जाता है, पूरा ट्रांसप्लांट चकेल ही बदल जाती है, तो बड़ा एक्सीडेंट हो गया ना। तो मन को नियंत्रण में कैसे रखा जाए, अब भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में देखा कि इंसान अपने आप मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। इसका प्रमाण क्या है अगर पूछा जाए तो, आप अपने बच्चों को 5 साल के बाद घर में कंट्रोल करके रख सकते हो, तब क्या करते हो, स्कूल भेजते हो। और भी ज्यादा जरा परेशान करता है तो कौन सी स्कूल भेजते हो, हॉस्टल वाली स्कूल, हॉस्टल वाली स्कूल भेजते हो। बच्चा ज्यादा शरारती तो उसके लिए निर्णय बोर्डिंग स्कूल में भेजते हैं। ऐसे भगवान ने देखा इन लोगों को इतना तो पता है कि बच्चों को स्कूल में नहीं भेजेंगे तो हमारा जीना हराम कर देंगे, ये बात सच है कि झूठ है। तो भगवान ने देखा कि ये मन भी ऐसा ही बदमाश बच्चा है, ये अगर मेरी स्कूल में नहीं भेजेंगे तो इनको पागल बना देगा। इसलिए भगवान ने कहा ये आपका मन मेरी स्कूल में, बोर्डिंग स्कूल में दाखिल कर दो, मैं अर्पित मन, मेरे को मन तेरा दे दो। अब समस्या ये कि मन हम भगवान को देने के लिए क्या करें, टोकरी में डाल के भगवान के दरवाजे में रख के आए, मन ऐसे तो है नहीं। आओ बेटे भाई, मन ऐसी चीज तो है नहीं कि आपके हाथ में आ जाए, क्या आप टोकरी में उठा के जाके भगवान के पास रख के आओ, ऐसे हो सकता है क्या मन को। भाई मन शरीर से बाहर निकाल के कहीं जाके दे के आ सकते हो क्या किसी को, बच्चे को जाके छोड़ के आओगे, ले जाके गाड़ी में जब बच्चे को दे के मास्टर के हवाले, फीस भी दे दिया, जान छुड़ाई आ गए घर, लेकिन मन को ऐसे कैसे छोड़ के आओगे। अब भगवान ने कहा ये मन निकाल के तो मेरे को नहीं दे सकते, फिर कह दिया मेरे को बुद्धि में बिठा दो, जहां तेरा मन है ना उसके ऊपर मेरे को बिठा दो। बुद्धि में मेरे को बिठा दो। अब मन तुम्हारा कहां है, बुद्धि के पास में बैठा है ना, स्टीयरिंग कहां है, ड्राइवर के पास में ना, तो उन्होंने कहा मेरे को ड्राइवर बना दो। तेरे वाली बुद्धि कई बार धोखा खा चुकी है, स्टीयरिंग का वो क्या कहते हैं, स्टीयरिंग फेल, क्या बोलते हैं, ब्रेक फेल, स्टीयरिंग का राड ही टूट चुकी है कई बार तुम्हारी। बहुत बड़ा तुमने धोखा खाया है, अब तो इसके ऊपर डिपेंड मत हो, तेरी बुद्धि मेरे को बुद्धि में बिठा दो, मैं इस स्टीयरिंग को संभाल लूंगा। मुझे मई एव मन आधस्त्व मई बुद्धि में निवेशय, मुझे बुद्धि में निवास कराओ, तेरी बुद्धि मेरा घर बनाओ, तो फिर मन को मैं अपने आप ठीक चलाऊंगा। ये भगवद गीता पढ़ना नहीं आती है तो कोई बात नहीं, भगवद गीता के ऊपर जो चित्र है, जो फोटो है, अभी तो रोई नहीं है, क्या बात है, नींद आ रही है या झगड़ा कर गई, तो सो जाओ। ये मन इसको परेशान कर रहा है और ये हमको परेशान कर रहे हैं, ये समस्या है। हरे कृष्णा। वो देखो एक छोटी बच्ची आई है तुम्हारी साइज की, वो बैठी है, जाओ उससे बात करके देखो नाम क्या है, पूछो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवद गीता का एक चित्र है जो सबने देखा है, फोटो देखा है, भगवद गीता के ऊपर जो होता है उसमें क्या है देखा है क्या है? एक रथ है,
अर्जुन का रथ है, कृष्ण हाथ
है। अच्छा, रथ के आगे क्या है? घोड़े।
घोड़े
घोड़े घोड़े कैसे बंधे हुए? लगाम घोड़ों में है, लगाम। और लगाम किसके हाथ में है? और कृष्ण कहाँ बैठा है? सारथी बने। अर्जुन कहाँ बैठा है? दूसरे कृष्ण के हाथ में क्या है, जाके देख के आओ। अब ये गीता का सार है। ये शरीर रथ है, हम जीवात्मा इसमें यात्री हैं। बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं। आंख नाक कान इंद्रियां ये घोड़े हैं। अब लगाम है मन और बुद्धि है सारथी। भगवद गीता का संदेश ये है कि बुद्धि में कृष्ण को बिठा दो, उसके हाथ में मन रूपी लगाम दे दो। तो आपकी गाड़ी ठीक चलेगी, लेकिन आपकी इंद्रियों के ऊपर किसी किसी समय कोड़ा पड़ेगा। भाई इतना काम कर रहा है, आपके बच्चे को हॉस्टल में पढ़ा सिखा के संयम में ला रहा है, तो कोड़े तो पड़ेंगे ही थोड़े से। ऐसा तो मुफ्त में तो नहीं होता। बच्चे हॉस्टल में जाते हैं, उनको मालूम है बच्चों को थोड़ा सा शक्ति होती है, उधर तब उधर भेजते हैं। तो ये जो कोड़े वाला हाथ है ना, ये संयम का है। मन संयम में तब आता है जब इंद्रियों के ऊपर कोड़े पड़ते हैं, नहीं तो मन संयम में नहीं होगा। तो ये जो रूप है भगवद गीता का, इसकी शिक्षा है बुद्धि में कृष्ण को बिठाना, इसको कृष्ण भावना कहते हैं। हर समय कृष्ण का चिंतन, चिंतन किससे होता है? चित्त से, मन चित्त इससे होता है। वो तब होगा जब बुद्धि में, अब हमने पहले क्या कहा, मन भगवान को अर्पण करो। तो मन कैसे अर्पण करेंगे? बुद्धि में ही भगवान को बिठा दो, तो भगवान मन के बिल्कुल पीछे बैठ जाएंगे, तो मन उनकी आंखों के सामने होगा, तो फिर इधर उधर बदमाशी करेगा नहीं। तो बुद्धि में भगवान को कैसे बिठाएं? अब बात है कि बुद्धि में भगवान को कैसे बिठाएं। बुद्धि में भगवान को बिठाने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास के द्वारा भगवान बुद्धि में आके बैठेंगे और मन को संभालेंगे। तो अभ्यास कौन सा करना पड़ेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो मंत्र जपने का अभ्यास है, ये भगवान श्री कृष्ण को अपने आप को अर्पण करना है। आके हमारी बुद्धि का संचालन करो, हमारी बुद्धि का संचालन आप करो। ये आत्मा का, आत्मा की प्रार्थना है। ये असल में आत्मा की प्रार्थना है कि भगवान आप हमारे सारथी बन जाओ। देखो अर्जुन को सारथी बनाना था कृष्ण को, तो द्वारका गया था, उसको प्रार्थना की थी, तब कृष्ण आके अर्जुन का सारथी बना था, और तब उसको मुश्किल से पार करके महाभारत के युद्ध से सफल बनाया था। तो इस संसार रूपी सागर के महायुद्ध से, काम क्रोध लोभ मोह आदि हमारे शत्रु हैं, जिनसे हमारा युद्ध कई जन्मों से चलता आ रहा है, और ये शत्रु हर समय हमको हराते हैं और हम हार जाते हैं। अब इस युद्ध में हमें विजय प्राप्त करनी है, तो अर्जुन की तरह हमें कृष्ण को सारथी बनाने के लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी, उसको बुद्धि में बिठाने के लिए विनती करनी पड़ेगी। और उस विनती का जो रास्ता है वो है रोज भगवान का नाम का अभ्यास, जप का अभ्यास करना। ये भगवान को बुद्धि में बिठाना है, तो फिर मन को भगवान संभालेंगे। और दूसरा कारण जो है, दूसरा जो मार्ग मन को वश में करने का भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वो है अभ्यासेन तो कौनते वैराग्येण से गृहते। दूसरा है कुछ जीवन में संयम रखना पड़ेगा, वो इंद्रियों को संयम में रखना पड़ेगा। वैराग का अर्थ होता है कोई चीज आपको अच्छी भी लगती है लेकिन किसी उत्तम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उस चीज को आप छोड़ देते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। तो वैराग क्या है? दुर्घटना से स्टीयरिंग के मन रूपी स्टीयरिंग किसको कंट्रोल करता है? पहियों को, व्हील्स को कंट्रोल करता है। तो इंद्रियों को वश में करने के लिए कुछ चीजों की सावधानी करनी। तो ड्राइवर क्या करता है? सावधानी, खड्डे से बचाता है, कोई पत्थर रोड़ा बीच में है तो उसके ऊपर नहीं चढ़ाएगा, ब्रेकर आएगा तो थोड़ा स्लो करेगा, दीवार में नहीं मारेगा, पेड़ में नहीं मारेगा, ये तो करना पड़ेगा ना, नहीं तो। तो ऐसे मानो के हरे कृष्ण, क्या क्या याद आ गया इसको? वैराग क्या है? बात ये कर रहे हैं, मन वश में करने के लिए श्री कृष्ण का संदेश है कि एक अभ्यास करो जिससे मैं आपकी बुद्धि में आऊंगा और आपके मन का संचालन करूंगा। और दूसरा, इन पहियों को गलत रास्ते के ऊपर मत चलाना, वन वे में अब नहीं मत ले जाना, नहीं तो चालान होगा। ठीक रास्ता है लेकिन वन वे है, जैसे खाना तो खाना ही है लेकिन मानव के लिए तो शाकाहारी भोजन ही है, ये वन वे है, इसको तोड़ के दूसरे किसी में गए तो चालान होना है। तो भोजन तो भोजन ही है, रोड तो दोनों रोड ही है लेकिन एक वन वे है, अच्छा खासा लग रहा है, खाली पड़ा है लेकिन उसके ऊपर जा नहीं सकते क्योंकि वो किसी और के आने का रास्ता है, उसके ऊपर शेर वेर आएगा, उसके चलने का रास्ता है, मानव के चलने का रास्ता वो नहीं है। तो वन वे, ये वन वे है, मानव को उस रास्ते के ऊपर नहीं जाना है। है तो रोड वही, वो तो खाने के लिए, जैसे भोजन वो भी भोजन है, वो भी भोजन है लेकिन वो भोजन शेर का है कि बिल्ली का है कि चीते का है, और आपका भोजन जो है वो शाकाहार है। अगर आप वन वे के ऊपर अपनी गाड़ी को ले गए तो निश्चित रूप से चालान होगा, और चालान होने का मतलब क्या है? कुछ फाइन भरना पड़ेगा, नहीं तो जेल में डालना पड़ेगा। और भगवान का जेल की कोठरी तो 84 अलग अलग शरीर हैं, किसी एक शरीर में डाल देगा उतने दिन के लिए वो जेल हो गई। तो एक तो वैराग ये है कि जो निर्धारित वेद शास्त्रों के अंतर्गत सात्विक भगवत प्रसाद रूपी भोजन है उसको ग्रहण करना चाहिए, तो मन को इंद्रियों को संयम करने में सहयोग मिलेगा। और दूसरा वैराग के अंतर्गत आता है हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। लोडो के ऊपर लिखा होता है एक स्लोगन, क्या होता है वो एक बात है, और लिखा है ड्रिंक एंड ड्राइव, क्या लिखा होता है नशा करके गाड़ी चलाओगे तो दुर्घटना होगी। सामान्य ड्राइवर के लिए ये टेस्ट करते हैं कि कितना परसेंटेज उसका है, नहीं तो चालान होता है। इसका मतलब शरीर रूप की रथ को सही मार्ग पे चलाने के लिए नशे का परित्याग करना पड़ेगा, ये दुर्घटना का दूसरा कारण है। कोई भी नशा करेंगे तो निश्चित रूप से नशा इंद्रियों की, अच्छा नशा आदमी करता क्यों है, नशा आदमी क्यों करता है इसके ऊपर विचार करना चाहिए। नशा मत करो ये बाद में कहो, नशा करता क्यों है ये कारण पहले ढूंढो, क्यों करता है आदमी नशा, क्या विचार है आपका? शराब जो अपनी भावनाओं के काबू नहीं रख पाता है,
टेंशन फ्री हो जाती है, कुछ ऐसा बोलते कि रिफ्रेशमेंट
लगता है, भूल जाते हैं टेंशन।
सुख ढूंढने का गलत रास्ता इस्तेमाल करता है, सुख ढूंढता तो
आनंद आनंद
आनंद ढूंढता है पर गलत रास्ता ढूंढ लेता है।
जो आदमी परेशान होता है और जो मुश्किल का मुकाबला नहीं कर सकता है, वो अपने आप को भुलाने के लिए थोड़ी देर के लिए नशे से उस मुश्किल को टालने का प्रयास करता है। ये भूल जाता है कि नशे उतरने के बाद वो मुश्किल वैसे की वैसे रहेगी और थोड़ी बढ़ जाएगी। हमने एक दिन देखा कि गाड़ी में लोग गुटखा खाके थूक रहे थे पान वान, तो हमने कहा आखिर ऐसे करते क्यों है, क्योंकि परेशान है, मुंह चलना चाहिए, खाली बैठने कुछ न कुछ होता रहना चाहिए, परेशान है। सारे नशों का एक ही कारण है, और बड़े लोग नशा इसलिए करते हैं उनको बड़ी परेशानी होती, वो तो बड़ा नशा करते, छोटे लोग छोटा नशा करते हैं छोटी परेशानी, लेकिन लोग हैं परेशान, इलाज गलत ढूंढा है। तो ऐसा इलाज ढूंढा है कि दूध रखा हुआ था पतीले में, उसके अंदर चूहा गिर गया, तो बच्ची ने आके बोला माँ माँ दूध में चूहा गिरा, माँ ने बोला बेटा बिल्ली डाल दो चूहे को खा जाएगी। तो दूध तो गया ही ना। तो ये जो नशा है वो ऐसा है कि दूध में चूहा है और बिल्ली ढक अंदर डाल दो, अब चूहा तो मर जाएगा लेकिन बिल्ली तो दूध में पड़ी होगी, बिल्ली दूध भी पी जाएगी चूहा भी खा जाएगी। तो ये इलाज ऐसा है, ये जो इलाज है नशा वो ऐसा इलाज है। पहले इस दुनिया में हमारे को ये शरीर एक बड़ा नशा है, और इस शरीर का सबसे बड़ा नशा है दो टाइम अन्न न मिले तो पागल हो जाएगा। एक नशा तो हम सबको ऐसा पड़ा हुआ है, उसके लिए 8 घंटे रोज परेशान होते हैं सुबह से शाम तक कमाने के लिए 2 टाइम की रोटी, ये नशा एक तो है शरीर का, अब इसके ऊपर एक और नया नशा डालने की जरूरत क्या है? तो नशा जो है ये इंद्रियों को थोड़ी देर के लिए मूड बना देता है, मूड का मतलब बिल्कुल बेकार कर देता है। इसे नशा दुख दूर करने के लिए होता है, लोगों का मानना ये है। नशे की जरूरत कहां है असल में? डॉक्टर को ऑपरेशन के समय नशे की जरूरत होती है, ताकि वो आपका दुख पीड़ा दूर करता है। उसके बाद रोज तो कोई आपको नहीं अस्पताल में बेहोश करेगा, ये रोज बेहोश क्यों करते हैं भाई, ये पीड़ा ऐसा तो नहीं बेहोश हो रहा है, तो ये नशे का गलत इस्तेमाल हो गया ना। जो मन को अगर वश में करना है और आप समझें कि मन हमारा संयम में रहे और भगवान बुद्धि में आके विराजमान हो, तो उसके लिए पहले तो मांस आहार को का परित्याग करना पड़ेगा। कैसे स्थान पे भगवान आके बैठेंगे भी नहीं जो मुर्दों का कब्रिस्तान बना हुआ हो, जिसका पेट, तो कब्रिस्तान में कौन बैठेगा रात को, भगवान क्यों आके बैठेगा? वो जिंदगी दिल में परमात्मा के रूप में बैठने का वायदा किया है कि कब्रिस्तान में थोड़ी बैठने के लिए बैठे। तो ये निश्चित रूप से निर्णय कर लेना चाहिए कि ये सभ्य मानव का भोजन नहीं है, मन को संतुलन करने के लिए ये आवश्यक है वैराग में। दूसरा, नशे से परहेज करनी चाहिए, और नशा इस दुनिया में सबसे बड़ा जो नशा है ना वो भोजन का है, अन्न का, वो छूट नहीं सकता। इस एक नशे से हमारा काम चलना चाहिए, इससे ज्यादा और नशे की जरूरत नहीं। नहीं, वैसे कलयुग अन्न ब्रह्म है, वैसे भी अन्न ब्रह्म है, तो भोजन तो करना ही पड़ेगा, और भोजन कमाना भी इतना मुश्किल है, जो कमाते हैं उनसे पूछ लो, बोला रोटी के लिए सुबह से शाम तक परेशान हो, तो और एक क्यों नशा बढ़ाने का? आपके पास कोई नशा आपके घरों में है क्या? है माता जी लोग, बोलो आपके घरों में कोई नशा है क्या ऐसे? आपके घरों में कोई नशा ऐसा पड़ा है क्या रोटी के अलावा? सोच विचार करके बताओ। गॉसिपिंग करते हैं, वो बेकार में बातें करते रहते हैं, वो बोलने का तो आदत है, वो भी आदत है।
टेलीविजन
है, क्रोध विकार है, ये मन के विकार है, क्रोधी स्वभाव होता है, तमोगुण का स्वभाव है क्रोध। जो आदमी तमोगुण में होता है उसमें क्रोध अधिक होता है। रजोगुण में कामना होती है और वो तमोगुण में क्रोध में परिवर्तित हो जाती है। काम रजोगुण है और वो तमोगुण में परिवर्तित होता है, जब क्रोध में परिवर्तित होता है। नहीं बता रही है माता जी लोग घर में नशा कोई है?
इंग्लिश दवाइयां है, तो इंग्लिश दवाइयां जो घर में रखते हैं वो दवाइयां ही नशा करती है।
वो बीमार है इसलिए नशा करना पड़ता है ना, जैसे बीमार के लिए दवाई नशा है, वो नशा है बीमार, दोनों बीमार की बात है।
बिना बीमारी की गाड़ी दवाई
बोलो बोलो बेटी, आपको कुछ याद आ गया? हाँ, क्यों सच बोल रही हो? बहुत देर छुपाया, एक ने सच बोल ही दिया। चाय का आदत है, नशा है, और चाय में डालते क्या हो? हाँ, पति तो परमेश्वर होता है, बेचारे को कहाँ चाय में डालते हो? ये बहुत बड़ा गड़बड़ काम है, बेचारे पति का हाल देगड़े में। अब तो छोड़ दो भाई, बहुत हो गया पति का। कैसे छूटती नहीं है ये चाय की प्याली, छूटती नहीं है, और कहते हैं कि हमको भगवान दिखा दो, हम सुखी होना चाहते हैं, इतना छोटी ये हिम्मत नहीं कर सकते हैं। एक हमारा बड़ा बुजुर्ग रिश्तेदार है, उसकी भाभी का देहांत हो गया, तो हरिद्वार गया तर्पण कराने के लिए, तो पंडित जी ने कहा कुछ छोड़ो। और ऐसे पंडित जी ने कहा चाय पीते? बोला हाँ। बोला छोड़ दो? बोला नहीं छोड़ सकता। पंडित जी ने कहा तुम्हारी भाभी का तर्पण करने आए हो वो तो चली गई? बोला हाँ। बोला उसके बगैर रह सकते हो? बोला रहना पड़ेगा। बोला तुम अपने इतने सगे संबंधी के जाने के ऊपर रह सकते हो और चाय को छोड़ के जी नहीं सकते? उस दिन उसने चाय छोड़ दी, अभी तक नहीं पीता है। उसको लग गया कि हम इतना छोटा काम भी नहीं कर सकते और दुनिया में कहते हैं कि हम इतने बड़े आदमी हैं, इतना सब कुछ, इतना छोटा काम भी नहीं कर सकते, ये अगर हमारे लिए एक्सीडेंट का एक छोटा सा कारण है तो यह तो छोटी चीज है। छोटी चीज नहीं है, असल में बहुत बुरी चीज थी, अब इसको हमने सामान्य बना दिया। आज से 40 साल पहले गांव के अंदर चाय जिस घर में होती थी उस घर को नशई का घर बोला जाता था। 40 साल हमको, आपकी उम्र नहीं है, आपको मालूम नहीं है, हमको मालूम है। चार घरों में गांव में चाय होती थी, बोला ये नशे, ये मवाली। अब देख, अब ये आप इसकी दादी, इसका मतलब इसने दादी को देखा ना, तो ये तो 40 साल की बात हो गई, ये इसी के अंतर्गत बात है ना। अब उसको सामान्य नशा मान, उसको हमने अपने हंडी का हिस्सा मान लिया। और बड़े समाज में घर में मंदिर हो न हो लेकिन शराब की बार नहीं है तो उस घर को घर नहीं माना जाता है। बड़े घरों के अंदर जिस सामान्य घर में बहुत सुंदर भगवान का अल्टर नहीं सजाते हैं, उसके सामने कीर्तन करते हैं, आरती करते हैं शाम के वक्त, बड़े घरों के अंदर बोतलों की पूजा होती है। बहुत बड़ा अच्छा अल्टर सजाया होता है, बहुत सुंदर, और वो भी उसके सामने नाचते हैं, उनका भी कीर्तन होता है। वो भी हमारी कंपटीशन में अपना प्रतिदिन का क्रिया करते हैं, और हम हो सकता है कभी दिया न जलाएं लेकिन उन्होंने कभी आज तक छोड़ा हो ऐसा नहीं है। कॉम्पिटेटिव, बिल्कुल कॉम्पिटेटिव है। तो बच्ची आपने कह तो दिया बेटी, लेकिन इसको छोड़ने की हिम्मत भी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो क्यों नहीं हो रही, कारण क्या है इसका? हम तो कहते हैं कि ये छोड़ना अपने आप में प्रयास करने से मुश्किल है, इसलिए जो पहले आपको कहा भगवान को बुद्धि में बिठा दो तो भाग जाएगी अपने आप। हमारा जीवन का अनुभव है प्रयास करने से नहीं छूटेगा, लेकिन भगवान का नाम जप करने से वो अपने आप भाग जाएगा। आप पकड़ोगे कि नहीं रुको, आज वो कहेगी नहीं रुकोगी, अब ये जगह मेरे लिए नहीं। आपको छोड़ने का प्रयास मत करो, आप सिर्फ जप करने का अभ्यास करो और ये भाग ना जाए, अपने आप भाग जाएगी। इसको छोड़ने के लिए प्रयास करना ही नहीं पड़ेगा आपको। वैसे आपका फायदा होगा छोड़ने के से कि नहीं, ये बताओ मुझे क्या क्या फायदा होगा, बोलो। पहला पैसा, बिल्कुल सीधी बात, पैसा बच्चे का, और
भूख लगेगी,
खाना अच्छा
रहेगा।
वैसे पीते क्यों है? क्या करने के लिए? अच्छा, सुस्त हो गया उसको भगाने के। सुस्ती का मतलब आलस, मतलब तमोगुण। तमोगुण को भगाने के लिए वही साधन हो गया। बिल्ली को डाल दिया चूहे को मारने के लिए, बिल्ली डाल दी। हरे कृष्णा। तो नशा में चाय घरों में है ही, दूसरा आजकल ये तो बेचारी स्त्रियों के भी नशा अच्छा है, लेकिन पुरुषों में एक दूसरा नशा आजकल गुटखा है। गुटखा, अच्छे खासे पढ़े खड़े एक बड़ी गाड़ी गाड़ी में बैठे हुए बोल नहीं सकते, पागल कहेंगे। ये सब परेशानी की वजह से है, और परेशानी से बचना है तो भगवान को अपना मित्र बना लो, नशे को मित्र बन मत बनाओ, वो हमेशा धोखा देगा, हानि करेगा। भगवान को मित्र बना लो। भगवान को मित्र बनाने से ये सब बुरी चीजें अपने आप आप आपका आपके पास रहेंगी भी नहीं। चाय हम पीकर बाहर फिर सत्संग सुनने जाते थे, 30-32-35 साल पुरानी बात, लेकिन कोई 5-7 दिन के बाद जैसे माला जपना शुरू किया, चाय हम कोई बोलता चाय पियो, चाय सामने पड़ी, लेकिन वो चाय भाग जाए, हमारे नजदीक ही नहीं आए, प्रयास नहीं करना पड़ेगा, अपने आप छूट गई। तो आपको करना, छोड़ने का प्रयास मत करो, थोड़ा सा भगवान का नाम अपने जीवन में जोड़ने का प्रयास करो। ये बच्चा ठीक कहता, चाय से हमारा एक तो पैसा बचेगा, दूसरा स्वस्थ ठीक रहेगा। चाय में कैफीन होती है, कैफीन चाय में कैफीन नशा है थोड़ा। और सबसे ज्यादा जो तो ये तो एक तो दिल को ज्यादा धड़काती है, और फिर स्टमक के ऊपर टेनिन है इसके अंदर, जो जाके एक तह जमा देती है, वो भोजन को उसके अंदर एब्जॉर्ब होने नहीं देती है, इसलिए खाने के बाद भी आदमी पनता नहीं है, उसका शरीर पनेगा नहीं, और फिर नहीं पियोगे तो सर में दर्द होगा। क्यों सर में दर्द होता है? सर में दर्द की इलाज क्या है वैसे भाई? गोली खाते थे ना पहले, कैफीन की, ये जो एपीसी होती है ना, एस्प्रिन फेनिस्टिन कैफीन, एपीसी, इसके लिए इसका नाम होता था। एपीसी का मतलब एस्प्रिन फेनिस्टिन कैफीन, तो कैफीन चाय में है, तो वो दर्द खत्म करने के लिए है। तो दर्द करती ही चाय नहीं मिलने से होता है, तो चाय पिया तब तो दर्द आया, उससे पहले तो नहीं था। सुस्ती भगाने के लिए सबसे अच्छा है कि सुबह सवेरे नहा लो, पानी सर के ऊपर गिरेगा, सुस्ती भाग जाएगी। आप बच्चों को उठाते हैं तब उसके मुंह में चाय डालते हैं कि पानी छिड़कते हैं, किसी को उठाना है? पानी छिड़कने से उठता है कि नहीं उठता है? तो ये वैराग्य के अंतर्गत आते हैं। वैराग्य का मतलब कुछ चीजों को छोड़ना चाहिए जो हमारे को दुर्घटना की तरफ ले जा रही है। ये हम अब समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि सारा समाज ऐसे कर रहा है, सब ऐसे कर रहे हैं, इसलिए हम कर रहे हैं। अरे भाई सब पागल होंगे तो हम पागल क्यों होंगे? भाई सही बात को तो सम्माननी चाहिए ना। भाई सबके पास ऐसे हुआ है तो हम भी ऐसे करें, तो ये बुद्धिमानी तो नहीं है। भाई सारे अंधे होंगे तो कोई चीज दिखेगी क्या? तो ये सिद्धांत तो ठीक नहीं है कि एक अंधा 100 अंधा 50 अंधा होंगे तो भी तो कुछ भी नहीं दिखेगा। इसलिए कौन सी आंख से देखना चाहिए? कहते शास्त्र चक्षु, शास्त्र की आंख से देखना चाहिए। तो बात कहां से शुरू हुई कि शरीर कहां है, मन कहां है? शरीर कहां है, मन कहां है? मन शरीर से बाहर निकल के इसलिए जाता है कि उसको कोई संभालने, घर से बच्चा बाहर कब जाता है? जब उसको माता पिता देखते नहीं है, ध्यान नहीं रखते, तब जाता है। अगर बच्चा के ऊपर नजर होगी तो नहीं जाएगा। जैसे बच्चे को कितना संभालना पड़ता है, ऐसे मन को नहीं संभालेंगे तो या तो अपने आप कहीं चला जाएगा किसी इंद्रिय के पीछे, और या कोई चुरा के ले जाएगा। मन को भी चुराने वाले बहुत से हैं, मन चला जाएगा। इसलिए सावधानी ये है कि मन को भगवान कहते मेरे पास डिपॉजिट कर दो। मैं ये मन आधस्व, आधस्व का मतलब मेरे पास डिपॉजिट करो। तो मन भगवान के पास कैसे डिपॉजिट करेंगे? भगवान को ही बुद्धि में बिठाएंगे तो वो मन के पास आके बैठ जाएंगे। और मन को भगवान में लगाने का मतलब जो मन के काम है, चिंतन भगवान मन का काम है, तो वो चिंतन भगवान का करो। संकल्प विकल्प जो मन के काम है, वो काम भगवान की सेवा के करो। मन कहेगा आज हमको ये खाने की इच्छा है, तो हाँ बहुत अच्छा, आज ये बनाएंगे भगवान के लिए। बस सिर्फ भगवान को बीच में जोड़ दो, काम तो वही करना है, सिर्फ भगवान को बीच में जोड़ते जाओ एक चीज को जीव में, नहीं तो आपके सारे काम जितने भी है मन के स्तर पे ऊपर जो भी काम करेंगे वो सब उनका रिजल्ट एंड में जीरो आएगा। जितना भी धन कमाओ, घर बनाओ, दुकान बनाओ, बच्चे पैदा करो, शादियां करो, वो आखिर में रिजल्ट जीरो आएगा, क्योंकि ये मन के स्तर के ऊपर किए हुए काम है। अब इन सब जीरो के आगे एक भगवान को जोड़ते जाओ, एक भगवान को बिठा दो पहले, एक भगवान को पीछे बिठाने के बाद आप जो चाहे वो करो, तो वो जीरो उस एक के आगे लगता जाएगा, 100,000, 10,000, 1,00,000 ऐसे होता जाएगा। तो बस जीवन में सिर्फ एक भगवान को बिठा दो और फिर देखो कि जो भी काम करते हैं वो आपके गुणा होते जाएंगे, मल्टीप्लाई होते जाएंगे। तो कृष्ण भावना अमृत संघ का उद्देश्य है हृदय में, बुद्धि में कृष्ण को बिठाना है, और उस बिठाने के लिए साधन है रोज भगवान श्री कृष्ण के वेदों में वर्णित ब्रह्मा के द्वारा निर्देशित महामंत्र का जप करना, सावधानी से जप करना भगवान को दिल में बुलाने के लिए, ताकि हम मन के द्वारा जो भी काम करते हैं वो भगवान की सेवा में संलग्न हो जाए, और भगवान फिर इंद्रियों को कुपथ के ऊपर नहीं जाने देंगे, क्योंकि दूसरे हाथ में उनके संयम का चाबक है। तो इसलिए हमने कहा कि जब हमने भगवान का नाम जपना शुरू किया तो भगवान के चाबक को देखकर चाय भाग गई, तो चाबक है ना हाथ में, अपने आप भाग गई। आप भगवान को बुलाओ, बाकी सब चीजें वो करेगा। हरे कृष्णा। तो चाय, तो चाय वाली बच्ची, क्या क्या नाम आपका? हाँ रीमा, तो आप भगवान के नाम को जप करना शुरू करेंगी, कर रही होगी, अभी करना शुरू करोगी? बोलो बेटी, आज से करेंगी कि कल से करेंगी? वेरी गुड। तो आप